डॉक्टर डेविड डिसिल्वा, नए नियम की सांस्कृतिक दुनिया पर, सत्र 3, संरक्षण और पारस्परिकता। 2024 डेविड डिसिल्वा और टेड हिल्डेब्रांट। यह डॉक्टर डेविड डिसिल्वा द्वारा नए नियम की सांस्कृतिक दुनिया पर दिए गए अपने व्याख्यान में है। यह सत्र 3 है, संरक्षण और पारस्परिकता। इस सत्र में हम संरक्षण की सामाजिक संस्था और पारस्परिकता के लोकाचार पर बारीकी से नजर डालेंगे, जो पहली सदी की भूमध्य सागरीय संस्कृति का आधार था। अमेरिका में अगर आप इसे कहते हुए सुनते हैं तो यह मायने नहीं रखता कि आप क्या जानते हैं। यह मायने रखता है कि आप किसे जानते हैं। यह आमतौर पर किसी व्यक्ति द्वारा अन्याय की भावना व्यक्त करने के संदर्भ में होता है। किसी चीज के लिए उसे इसलिए पीटा गया क्योंकि किसी और का व्यक्तिगत संबंध था जिसने उसे एक निश्चित लक्ष्य प्राप्त करने का लाभ दिया। हम जो चाहते हैं या जिसकी हमें जरूरत है उसे पाने के लिए हम बहुत अधिक अवैयक्तिक, गैर संबंधप्रक दृष्टिकोण के साथ काम करते हैं। उदाहरण के लिए, नौकरी की तलाश एक काफी अवैयक्तिक आवेदन प्रक्रिया होती है, कम से कम एक निश्चित बिंदु तक। जब हमें किसी वस्तु की आवश्यकता होती है तो हमारा पहला आवेग स्टोर amazon.com या किसी अन्य स्थान पर जाकर वह वस्तु प्राप्त करना होता है जिसकी हमें आवश्यकता होती है। भले ही हमारे पास वर्तमान में किसी चीज के लिए संसाधन न हो, उदाहरण के लिए घर बनाना, घर खरीदना या व्यवसाय शुरू करना, हम पैसे के लिए किसी अवैयक्तिक एजेंसी, बैंक, क्रेडिट यूनियन या ऐसी ही किसी चीज के पास जाते हैं। यदि आपदा आती है तो हम उबरने के लिए आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराने के लिए बीमा पर निर्भर रहते हैं। भूमध्य सागरीय दुनिया की पहली सदी इन सब से अलग दुनिया थी। वहां बाजार में भोजन से परे कई जरूरतों के लिए आपकी पहली जरूरत का संसाधन वह व्यक्ति होता है जो आपको वह दे सकता है जिसकी आपको जरूरत है। एक रिश्ता, दूसरा व्यक्ति जिसके पास वह सब कुछ था जिसकी आपको जरूरत थी। उदारता के मूल्य या गुण और कृतज्ञता के मूल्य के आधार पर पहुंच का प्राथमिक साधन था। यह सब न्याय के गुण पर आधारित है। हम फिर से सेनेका के पास जाते हैं, जो हमारे प्रथम शताब्दी के सूचनादाता हैं, जिन्होंने अपनी पुस्तक ऑन बेनिफिट्स में संरक्षण, मित्रता और इन संबंधों को नियंत्रित करने वाले इस लोकाचार का वास्तव में एक अद्भुत प्रत्यक्ष परिचय दिया है। हम सेनेका की ओर मुड़ते हैं, जो लिखते हैं कि उपकार देना और प्राप्त करना वह अभ्यास है जो मानव समाज के मुख्य बंधन का निर्माण करता है। यह वह गोंद है जो समाज को एक साथ बांधे रखता है। यह सामाजिक ताने बाने में मुख्य ताना बाना है। हाँ, हर बड़े शहर में और शायद गांव में भी एक बाजार होता है जहां आप अपनी मछली, सब्जियां, रोटी और ऐसी ही चीजें खरीदने जाते हैं। ऐसे कारीगर और शिल्पकार हैं जिनसे आप सामान खरीदते हैं, लेकिन प्राचीन दुनिया में दैनिक जीवन में व्यक्तिगत सहायता के लिए आधुनिक पश्चिमी दुनिया की अपेक्षा या अपेक्षा से कहीं अधिक स्थान था। इसलिए एक संरक्षक, कोई ऐसा व्यक्ति जिसके पास मुझसे अधिक साधन हैं, वह पैसे या अभाव के समय अनाज या जब मैं रोजगार की तलाश में हूँ या भूमि का अनुदान या ऐसी ही कोई चीज प्रदान कर सकता है। मैं किसी ऐसे व्यक्ति के पास जाऊंगा जिसके पास साधन हो और ऐसी कृपा के लिए प्रार्थना करूं। मैं किसी दूसरे व्यक्ति से संपर्क कर सकता हूं, इसलिए नहीं कि उसके पास वह है जो मुझे चाहिए, बल्कि इसलिए कि उसके पास उस व्यक्ति तक पहुंच है जिसके पास वह है जो मुझे चाहिए। मैं romanforum.com या ऐसी ही किसी चीज पर नौकरी के लिए आवेदन पोस्ट करने के बजाय पेशेवर या सामाजिक उन्नति के साधन के रूप में व्यक्तिगत संबंध की तलाश करूंगा। तो ऐसे संरक्षक हैं जो सहायता प्रदान करते हैं, और ऐसे ग्राहक हैं जो सहायता प्राप्त करते हैं। वे खुद को ग्राहक होने की स्थिति में रखते हैं और किसी भी रूप में सहायता प्राप्त करने के साथ साथ ग्राहक कृतज्ञता का दायित्व भी स्वीकार करता है, जो उपकार किया गया है उसे प्रचारित करने का दायित्व और इसके लिए अपनी कृतज्ञता को प्रचारित करना, इस प्रकार संरक्षक की प्रतिष्ठा का निर्माण करना। एक ग्राहक किसी खास संरक्षक के प्रति वफादारी दिखाकर भी कृतज्ञता प्रकट करता है। शहर में संरक्षक अपने अपने खेल खेलते थे। वे अपने राजनीतिक खेल खेलते थे, एक दूसरे पर बढ़त की तलाश करते थे, शहर में पद पर बने रहने की कोशिश करते थे, कार्यालयों में आगे बढ़ने की कोशिश करते थे। ग्राहक अपने संरक्षकों का समर्थन करते थे, इसलिए उदारता, सहायता और सहायता के माध्यम से बड़ी संख्या में ग्राहकों को इकट्ठा करना भी किसी की शक्ति का आधार बढ़ाने का एक तरीका था। मैं एक ग्राहक के रूप में अपने संरक्षक के हितों को यथासंभव आगे बढ़ाता था। एक ग्राहक आमतौर पर, चूंकि वह किसी संरक्षक को उपहार के रूप में वापस नहीं कर सकता था, इसलिए अक्सर संरक्षक के लिए सेवाएं करता था। वास्तव में यह एक तरह से रूढ़िवादी है, लेकिन गॉडफादर में शुरुआती दृश्य शायद अभी भी सबसे अच्छा परिचय है, और यह भूमध्य सागरीय संदर्भ में सेट है। आखिरकार भले ही एक आधुनिक दृश्य संरक्षण का सबसे अच्छा परिचय है। एक संरक्षक एक ग्राहक को इकट्ठा करता है और एक संरक्षक के पास सभी प्रकार के अनुरोधों को पूरा करने की शक्ति होती है, और अगर ऐसा होता है कि आपको कोई सेवा करने के लिए बुलाया जाता है तो आप इस दिन को याद रखेंगे। यह वास्तव में प्राचीन लोकाचार को काफी अच्छी तरह से दर्शाता है। मैं कभी भी किसी संरक्षक को जमीन के अनुदान या अपने परिवार को खराब फसल से उबारने के लिए ऋण नहीं चुका पाऊंगा, लेकिन जब ऐसा करने के लिए कहा जाता है तो मैं उसके लिए कुछ सेवाएं कर सकता हूं। हमने संरक्षकों के बारे में बात की है, हमने ग्राहकों के बारे में बात की है, और मैंने यह भी उल्लेख किया है कि एक संरक्षक का सबसे बड़ा उपहार दूसरे संरक्षक तक पहुँच हो सकता है। जिस व्यक्ति से मैं जुड़ा हो सकता हूँ उसके पास वह नहीं हो सकता है जिसकी मुझे जरूरत है, लेकिन उस व्यक्ति का कोई दोस्त हो सकता है जिसके पास वह हो जिसकी मुझे जरूरत है, और इसलिए हम उस पहले संरक्षक के बारे में एक मध्यस्थ, एक दलाल के रूप में भी बात कर सकते हैं। इसके लिए अधिक आधुनिक शब्द का उपयोग करें। कोई ऐसा व्यक्ति जो क्लाइंट को दूसरे ऐसे व्यक्ति से जोड़ सके जिसके पास वह सब हो जिसकी उस क्लाइंट को जरूरत है। सोफोक्लीस के नाटक ओडिपस द किंग में इस तरह के व्यक्ति की अच्छी गवाही है। ओडिपस का साला, चाचा, ससुर, यह सब ओडिपस की कहानी के कारण बहुत जटिल है, लेकिन क्रेन, जो ओडिपस की पत्नी और माँ का भाई है, स्पॉइलर अलर्ट, कहता है कि उसकी शक्ति का आधार वह नहीं है जो वह खुद प्रदान कर सकता है, बल्कि यह तथ्य है कि उसके पास राजा ओडिपस का कान है। इसलिए वह लिखते हैं, मेरा हर जगह स्वागत है, हर कोई मुझे सलाम करता है, और जो लोग आपका पक्ष चाहते हैं वे मेरी बात सुनते हैं, क्योंकि मैं जानता हूं कि अगर कोई रोमन प्लिनी या सिसेरो के पत्रों को पढ़े तो वे जो पूछते हैं उसे कैसे संभालना है। प्लिनी एक सीनेटर था जो अंतः बिथिनिया और पोंटस के प्रांतों का गवर्नर बन गया, जो अब तुर्की का उत्तरी इलाका है। सिसेरो बेशक साम्राज्यवाद से पहले के दौर, गणतंत्र काल के एक प्रसिद्ध राजनेता हैं, और आपको दलाली के कई उदाहरण मिल जाएंगे। उदाहरण के लिए, बिथिनिया और पोंटस के गवर्नर के रूप में प्लिनी प्रांत के लोगों को कई उपहार, सेवाएं और उन्नति के अवसर प्रदान कर सकते हैं, लेकिन उनके पास एक ऐसा उपहार भी है जो प्रांत में लगभग किसी और के पास नहीं है। उनके पास सम्राट ट्राजन तक पहुंच का उपहार है। तो वास्तव में प्लिनी से जिन चीजों की मांग की जाती है उनमें से कई ऐसी चीजें हैं जो केवल ट्राजन ही दे सकता है। उदाहरण के लिए, प्लिनी की वफादार मालिश करने वाली को रोमन नागरिकता का उपहार जैसी चीजें। तो वास्तव में एक संरक्षक के रूप में प्लिनी की शक्ति एक और भी बड़े संरक्षक के उपहारों की मध्यस्थता करने की उसकी क्षमता से आती है। अब तक हमने बात की है, मैंने सामाजिक असमानता के संदर्भ में संरक्षण और ग्राहक के बारे में बात की है। संरक्षक शक्तिशाली व्यक्ति है, अमीर है, बेहतर संसाधन वाला व्यक्ति है। ग्राहक जाहिर है, सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक रूप से निम्न है। लेकिन इस तरह की गतिशीलता सामाजिक समानताओं के बीच भी मौजूद थी। प्लिनी और प्लिनी जैसा ही कोई व्यक्ति जो दूसरे प्रांत का गवर्नर हो एक दूसरे की मदद कर सकता था। कोई एक दूसरे का संरक्षक नहीं बनता, कोई दूसरे का ग्राहक बनने से वंचित नहीं होता, बल्कि वे एक दूसरे को दोस्त मानते थे। पहली सदी में दोस्ती की भाषा बराबरी के लोगों के बीच, सामाजिक बराबरी के लोगों के बीच संरक्षण की भाषा है। आप पिलातुस और हेरोदेस एंटिपस की जुनून भरी कहानी के बारे में सोच सकते हैं, क्योंकि पिलातुस ने उस जुनून भरी कहानी के बीच में हेरोदेस एंटिपस के साथ शिष्टाचार दिखाया, जिससे हेरोदेस को इस यीशु के मामले का न्याय करने का अवसर मिला। उस दिन पिलातुस और हेरोदेस दोस्त बन गए। इसका मतलब यह नहीं है कि वे इतने दोस्त बन गए, क्योंकि वे अचानक प्रतिद्वंद्विता के रिश्ते से ऐसे रिश्ते में बदल गए जहां वे एक दूसरे का पक्ष लेने लगे। वे एक दूसरे के लिए उपकार करते थे और एक दूसरे के हितों का ख्याल रखते थे। न तो कोई वास्तव में दूसरे से कमतर था और न ही श्रेष्ठ, हालांकि अगर कोई हेरोदेस एंटिपस होता तो शायद इस बात पर बहस कर सकता था। खैर, पिलातुस का भी अपना दावा होगा। लेकिन वे अनिवार्य रूप से राजनीतिक रूप से समान थे, जो तब से एक दूसरे के लिए उपकार करते थे। संरक्षण, पारस्परिकता और मित्रता केवल पहली सदी की दुनिया में अभिजात वर्ग के लिए मायने नहीं रखती है। नहीं, वे केवल ऐसे रिश्ते थे जो अभिजात वर्ग को गैरभिजात वर्ग से जोड़ सकते थे। ग्रामीण आबादी, कृषि वर्ग के बीच भी इसी तरह की व्यवस्था, समान लोकाचार के प्रमाण मिलते हैं, जो हेसियोर तक वापस जाते हैं। मेरा मानना है कि 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के एक यूनानी लेखक अपने वर्क्स एंड डेज में, जो एक ऐसा काम है जो ग्रीक लोगों के आम कृषि जीवन के बारे में है, वह सलाह देता है कि किसान गांव में एहसान, सेवाओं और उपहारों के आदान प्रदान में कैसे भाग लिया जाए। अपने पड़ोसी से उचित नाप लें और उसे उसी नाप से या उससे बेहतर तरीके से वापस करें, ताकि अगर बाद में आपको जरूरत पड़े तो आप उसे पा सकें। हेसियोर पड़ोसी ए की पड़ोसी बी की मदद करने की इच्छा को देख रहा है। मेरे पास अपनी अगली फसल बोने के लिए बीज नहीं है, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? और फिर पड़ोसी बी की समझदारी यह सुनिश्चित करती है कि वह पड़ोसी ए को वापस और अधिक दे, ताकि अगर पड़ोसी बी को कभी फिर से जरूरत पड़े तो वह खुद को एक सम्माननीय ग्राहक के रूप में स्थापित कर ले। यह एक गलत शब्द है, लेकिन एक सम्माननीय पड़ोसी, एक सम्माननीय दोस्त, कोई ऐसा व्यक्ति जो दिए गए उपकारों या उपहारों को वापस करेगा, भले ही बदले में बेहतर उपाय हों। इस तरह का लोकाचार आधुनिक भूमध्य सागरीय कृषि गांवों में देखा जाना जारी है, जहां उपकारों का आदान प्रदान आवश्यक है और उपकार का बदला न चुकाने का परिणाम अंतः उपकार के नेटवर्क से बहिष्कृत होना है, और इस प्रकार एक अर्थ में स्वयं और अपने परिवार के लिए सामाजिक विफलता है, क्योंकि किसी को हमेशा किसी न किसी बिंदु पर सहायता की आवश्यकता होगी। हमें प्राचीन दुनिया में सार्वजनिक उपकार और व्यक्तिगत संरक्षण के बीच अंतर को देखना चाहिए। यदि आप भूमध्य सागर में किसी भी पुरातात्विक स्थल या संग्रहालय में जाएं, तो आपको बहुत सारे शिलालेख मिलेंगे जो इस बात की गवाही देते हैं कि शहर के किसी अमीर सदस्य या किसी अन्य शहर के किसी अमीर सदस्य ने जनता को कुछ उपहार दिया है, चाहे वह हर 4 साल में खेलों को प्रायोजित करने का उपहार हो, या अपने खर्च पर किसी उत्सव का उपहार हो, या मंदिर का उपहार हो, या फुटपाथ, या फव्वारा, या ऐसी ही कोई चीज का उपहार हो। साधन संपन्न लोग जनता को देने के लिए तैयार रहते थे और इस तरह एक स्मारक बनाकर अपनी प्रतिष्ठा बढ़ाते थे जो हमेशा गवाही देगा। कुछ आम तौर पर काम करने वाले स्मारक जो हमेशा उनकी उदारता की गवाही देंगे। और शिलालेख और शायद उस समय इस तथ्य की किसी तरह की सार्वजनिक मान्यता की यह उपहार दिया गया था। लेकिन ऐसा करने में उस परोपकारी, उस सार्वजनिक परोपकारी ने अचानक शहर में सभी के साथ संबंधों का जाल नहीं बनाया। नहीं, यह सामान्य रूप से सभी के लिए एक उपहार था और इसलिए किसी विशेष के लिए उपहार नहीं था। और इसलिए आम जनता धन्यवाद और सम्मान व्यक्त करेगी, लेकिन कोई भी इफिसियन नए फव्वारे के लिए मैक्सिमस का ऋणी महसूस नहीं करेगा। मैं यह बना रहा हूं। आपको वास्तव में इफिसस में मैक्सिमस के लिए कोई फव्वारा नहीं मिलेगा। जब संरक्षण या दोस्ती आमने सामने होती है तो यह बहुत अलग होता है। जब किसी शहर का निवासी शहर के किसी अमीर व्यक्ति से मदद के लिए संपर्क करता है तो उस व्यक्ति को कुछ देने और जवाब देने का वह कार्य दीर्घकालिक संबंध बना सकता है, क्योंकि मैं सिर्फ एक बार नहीं दे रहा हूं। मैं एक ऐसे व्यक्ति को दे रहा हूं जो अगर सद्गुणी है तो मेरे हितों को आगे बढ़ाने वाले तरीकों से काम करना जारी रखेगा। वह आमतौर पर वह, कभी कभी वह, लेकिन आमतौर पर वह मुझे अलग अलग तरीकों से वापस देगा जो मैंने दिया है, लेकिन वह फिर भी एहसान वापस कर रहा होगा और इसलिए वह मुझसे फिर से कुछ मांगने की स्थिति में होगा। और अगर वह अच्छा प्राप्त करता रहा है तो मैं वास्तव में मना करने की स्थिति में नहीं रहूंगा, क्योंकि मैंने दिया है, उसने कृतज्ञता दिखाई है, मुझे फिर से देना चाहिए। और वह मेरे हितों को आगे बढ़ाना जारी रखेगा और इसी तरह आगे भी। तो देने का यह प्रारंभिक कार्य बहुत अच्छी तरह से आजीवन संबंध शुरू कर सकता है। और कुछ लेखकों को पढ़ना, जैसे कि बेन सिराह या संग्रह के लेखक टू डेमोनिकस, यह चौथी शताब्दी के यूनानी वक्ता और वक्ता आइसोक्रेट्स को श्रद्धांजलि है, लेकिन यह संभवतः छद्म नाम है। सलाह के इन संग्रहों को पढ़ने से ऐसा लगता है कि कोई अपने पिता की दोस्ती विरासत में पा सकता है। बेटे को पिता के प्रति दिखाई गई दयालुता का बदला चुकाना था, ताकि हम लोगों के बीच दोस्ती या संरक्षण और ग्राहकता के अंतरपीढ़ी के रिश्ते भी बना सकें। परिणामस्वरूप सेनेका कहते हैं, मैं कोई उपकार करने या उपकार प्राप्त करने से पहले बहुत सावधान रहने वाला हूँ। मुझे बहुत आश्वस्त होना होगा कि यह कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके साथ मैं संभावित रूप से इस तरह के रिश्ते में दीर्घकालिक संबंध रखना चाहता हूँ। अब यह बिल्कुल भी आश्चर्यजनक नहीं होगा कि प्राचीन दुनिया में लोगों ने देवताओं के साथ अपने संबंधों की अवधारणा बनाई थी, या फिर यहूदी लोगों के मामले में ईश्वर के साथ संरक्षण और ग्राहकता की तर्ज पर। यह देवताओं के बारे में बात करने का प्राथमिक मॉडल बन गया। वे लगभग किसी भी मानव उपकारकर्ता की तुलना में बेहतर, बड़े और अधिक महत्वपूर्ण उपहार देते हैं। और इसलिए हम देवताओं के प्रति ऋणी हैं, इसलिए हम उन्हें जो भी सम्मान दे सकते हैं वह देना चाहिए। मंदिर में हम जो पूजा करते हैं वह देवताओं के प्रति उनके उपहारों के लिए कृतज्ञता की निरंतर पेशकश है। दलाली मध्यस्थ कई ग्रीक और रोमन सेटिंग्स के साथ साथ यहूदी और ईसाई सेटिंग्स में पुजारी के लिए मॉडल बन जाता है। पोंटस और किसी चीज का निर्माता के अर्थ वाले शब्दों से आया है, इसलिए पुजारी का नाम शाब्दिक रूप से पुल बनाने वाले के रूप में रखा गया है। वह लोगों को देवताओं से और देवताओं को लोगों से जोड़ता है और दोनों के बीच संबंधों को बेहतर बनाने में मदद करता है, ताकि एक को याचिकाएं भेजी जाएं और एक को बलिदान लौटाया जाए, जो बदले में फिर से उपासकों पर उपहारों की बरसात करता है। प्राचीन दुनिया में दैवीय संरक्षकों और मानव संरक्षकों के बीच की ये सीमाएं धुंधली हो सकती हैं। रोमन दुनिया में सम्राट पंथ की घटना, विशेष रूप से भूमध्य सागर के पूर्वी हिस्से में, हमें काम पर दिखाती है। हालांकि उससे भी पहले शहर को आजाद कराने वाले सेनापतियों को कृतज्ञता की अभिव्यक्ति के रूप में पूजा की पेशकश की जा सकती थी, डेमेट्रियस पोलियोरसेट्स एक सेनापति था जिसने एथेंस को एक हमलावर के कब्जे में आने से बचाया था। डेमेट्रियस के एक शिलालेख में एथेंस में डेमेट्रियस के लिए पूजा एक पंथ की स्थापना की गई है क्योंकि उसने देवताओं को वे उपहार दिए थे जिनके लिए एथेनियन प्रार्थना कर रहे थे। शिलालेख में हम पढ़ते हैं, अन्य देवता बहुत दूर हैं या उनके कान नहीं हैं, या वे अस्तित्व में नहीं हैं, या उन्हें हमारी कोई परवाह नहीं है। लेकिन आप हम यहाँ देख रहे हैं मौजूद हैं पत्थर या लकड़ी से नहीं बल्कि वास्तविकता में। और इसलिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं, पहले हमें शांति प्रदान करें क्योंकि आपके पास शक्ति है। ऑगस्टस के उदय के 3 शताब्दी बाद हेरोद महान के समकालीन, वास्तव में हेरोद महान के एक निजी मित्र दमिश्क के निकोलस उस समय के इतिहासकार ऑगस्टस के पंथ के जन्म के बारे में इस तरह लिखते हैं, भूमध्य सागर के आसपास के सभी लोग उसे ऑगस्टस के नाम से संबोधित करते हैं जो उनके सम्मान के अपने आकलन के अनुसार है। द्वीपों और महाद्वीपों में मंदिरों और बलिदानों के साथ उनका सम्मान करते हैं। शहरों और प्रांतों में आयोजित किए जाते हैं, उनके गुणों की महानता से मेल खाते हैं और उनके प्रति उनके उपकार का बदला चुकाते हैं। इन सबका निहितार्थ यह है कि ऑगस्टस ने भूमध्य सागरीय दुनिया को देवताओं के योग्य उपहार दिए। उन्हें मूलतः गृहयुद्धों की एक पीढ़ी के अंत में शांति लाने का श्रेय दिया जाता है। इस तथ्य को भूल जाइए कि वह इसके लिए जिम्मेदार थे और उनके दत्तक पिता जूलियस सीजर भी इसके लिए जिम्मेदार थे, लेकिन उन्होंने उन्हें सफलतापूर्वक समाप्त किया और इस तरह पूरे भूमध्य सागरीय क्षेत्र में स्थिरता, सुरक्षा और समृद्धि बहाल की। इसके जवाब में, क्योंकि उनके उपहार इतने महान थे, कृतज्ञता की प्रतिक्रिया भी वैसी ही होनी चाहिए थी, और इसलिए कुछ हद तक चापलूसी के लिए जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए भूमध्य सागर के आसपास के लोगों, विशेष रूप से पूर्वी आधे हिस्से ने यह कहने के तरीके के रूप में पूजा के रूपों की ओर रुख किया, यह है कि हम आपके उपकार का कितना सम्मान करते हैं जो उपहार आपने हमें दिए हैं और देते रहेंगे। ऐसा कहने के बाद और आगे भी देता रहूंगा, मुझे यह तथ्य याद आता है कि बहुत से लोग ग्रीको रोमन धर्म को लैटिन अभिव्यक्ति डू यूट डेस के संदर्भ में सोचते हैं। मैं इसलिए देता हूं ताकि आप दे सकें। और इसलिए ग्रीको रोमन धर्म और यहूदी या ईसाई धर्म के बीच अक्सर यह अंतर किया जाता है कि पूर्व में देवताओं को कुछ मांग पूरी करने के लिए प्रेरित करने के लिए दिया जाता है, जबकि बाद में केवल भगवान ने जो किया है उसके जवाब में दिया जाता है। क्विया डे डिस्टी की भावना के कई उदाहरण मिलते हैं। मैं लैटिन में वास्तव में बहुत अच्छा नहीं हूं, मुझे यह समझने में थोड़ा समय लगा, मैं इसलिए देता हूं क्योंकि आपने दिया है। और यह ग्रीको रोमन और यहूदी दुनिया में धर्म की प्रेरक शक्ति है। मैं यह स्वीकार करने के लिए देता हूं कि क्या बलिदान, क्या प्रशंसा, मैं जो भी धार्मिक रूप से करता हूं, मैं यह आपके द्वारा दिए गए उपहारों को स्वीकार करने के लिए करता हूं, लेकिन साथ ही दोनों स्थितियों में इस जागरूकता के साथ कि आपके उपहारों के आभारी प्राप्तकर्ता के रूप में मैं अधिक उपहारों के लिए एक अच्छा उम्मीदवार हूं उस व्यक्ति के विपरीत जो आपके उपहारों को हल्के में लेता है और आपको उचित धन्यवाद नहीं देता है। आप इसे पा सकते हैं, आप इसे ग्रीको रोमन और यहूदी साहित्य दोनों में देख सकते हैं। इन रिश्तों के लोकाचार पर अधिक विशेष रूप से ध्यान केंद्रित करने के लिए मैं आप सभी के साथ अनुग्रह के सामाजिक संदर्भ के बारे में सोचना चाहता हूं। अब मेरे लिए अनुग्रह मुख्य रूप से एक धार्मिक शब्द है। यह एक धार्मिक शब्द है। मैं वास्तविक दुनिया में अनुग्रह के बारे में नहीं सुनता। वास्तविक दुनिया में यह कहना गलत है। मैं इसे केवल सेमिनारियों और चर्चों में ही सुनता हूं। लेकिन हमारे लिए यह समझना बहुत महत्वपूर्ण है कि पॉल और अन्य नए नियम के लेखकों ने अनुग्रह को एक विशेष धार्मिक शब्द बनने से पहले लिखा था। उनके समय में अनुग्रह एक रोजमर्रा का शब्द था। यह वास्तव में हर संदर्भ में हर जगह मौजूद था जहां अनुग्रह दिया जाता था, प्राप्त किया जाता था और वापस किया जाता था। और पौलुस और नए नियम के अन्य लेखक उस दुनिया में पहुंचे ताकि इस बारे में सार्थक रूप से बात कर सकें कि परमेश्वर ने यीशु मसीह में दुनिया के लिए क्या किया है। अब उस दुनिया में चरिस के वास्तव में चार अलग अलग अर्थ हैं। एक है आकर्षक या अनुग्रहित होने का भाव। मान लीजिए कि मैंने वहां अनुग्रह शब्द का भी इस्तेमाल किया है, लेकिन चारिस का इस्तेमाल सुंदरता या संतुलन या किसी ऐसी चीज के बारे में बात करने के लिए किया जा सकता है जिसे, हालांकि एक प्राकृतिक उपहार, देवताओं या भगवान का उपहार उस व्यक्ति के लिए समझा जाता है जो इस तरह पैदा हुआ है। लेकिन मुख्य रूप से चारिस के तीन अर्थ हैं। पहला, यह किसी संरक्षक या मित्र की देने, उदार होने, किसी जरूरतमंद की मदद करने की इच्छा है। इसलिए हम आम तौर पर उस संदर्भ में चारिस का अनुवाद अनुग्रह या कृपा के रूप में करते हैं। लेकिन यह किसी के देने की इच्छा के विशेष अर्थ में अनुग्रह है। चारिस का दूसरा अर्थ उपहार होता है, वह चीज जो खुद दी जाती है। अक्सर यह बहुवचन में दिखाई देता है उपहार, लेकिन इसका उपयोग वास्तविक सहायता या वास्तव में दिए गए उपहार को नाम देने के लिए भी किया जाता है। और तीसरा अर्थ कृतज्ञता या धन्यवाद है। इसे अक्सर प्रार्थनाओं और धार्मिक भाषा में या पॉल द्वारा किए जाने वाले सहज स्खलन के प्रकारों में उस अर्थ के साथ प्रयोग किया जाता है। परमेश्वर को उसके अवर्णनीय उपहार के लिए धन्यवाद। ग्रीक में पहला शब्द है चरिस तोथियो, परमेश्वर का अनुग्रह, जो अनुग्रह के अर्थ में अनुग्रह नहीं है। यह अनुग्रह है जिसका अर्थ है अनुग्रह को स्वीकार करना, धन्यवाद देना और कृतज्ञता दिखाना। और रिकॉर्ड के लिए चरिस का विपरीत शब्द है अचरिष्टिया, अनुग्रह की कमी। और इसका उपयोग मुख्य रूप से कृतघ्नता, अनुग्रह के बदले अनुग्रह लौटाने में विफलता या इनकार, उपकार के बदले उपकार लौटाने के लिए किया जाता है। अब इस शब्द चरिस द्वारा तीन अर्थ एक साथ रखे गए हैं, देने वाले का उपकार उपहार ही, प्राप्तकर्ता द्वारा कृतज्ञता का प्रतिदान। ये पहले से ही स्पष्ट रूप से वही संकेत देते हैं जो ग्रीक और रोमन संस्कृतियों के कई नैतिकतावादियों ने स्पष्ट रूप से कहा है। अनुग्रह का बदला अनुग्रह से ही मिलना चाहिए। अनुग्रह से हमेशा अनुग्रह ही उत्पन्न होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो कृपा का दुरुपयोग किया गया है और जो सुंदर है उसे बदसूरत और अपमानित किया गया है। प्राचीन दुनिया में इस लोकाचार के साथ चलने वाली एक बहुत ही आम छवि तीन कृपाओं की छवि है। यदि आप इटली, ग्रीस या यहां तक कि तुर्की में किसी भी अच्छे आकार के संग्रहालय में जाते हैं तो आपको संभवतः तीन कृपाओं का कोई न कोई चित्रण अवश्य मिलेगा। यहां चित्रित दोनों प्रतिमाएं इटली से हैं, एक पोम्पेई से और एक रोम के एक विला से, जो अब रोम के हृदय में स्थित कैपिटोलिन संग्रहालय में है। लेकिन आप साइरेनिका, आधुनिक लीबिया, साइरेनिका के रोमन प्रांत और एशिया माइनर में मोजाइक और भित्तिचित्रों में एक ही छवि पा सकते हैं। मुझे तुर्की के हिरापोलिस में तीन ग्रेस की एक फ्रिज देखकर आश्चर्य हुआ। मेरा मतलब है, मुझे यह वैसे नहीं मिला जैसे मैंने इसे खोजा था। यह एक संग्रहालय में था, लेकिन यह एक सर्वव्यापी भूमध्य सागरीय छवि है। और यह इस सामाजिक संस्था का प्रतिनिधित्व करता है जो देने, प्राप्त करने और उपकार के बदले में देने की प्रक्रिया है। और सेनेका एक बार फिर वास्तव में इस छवि की ओर इशारा करते हैं और लाभों पर अपनी पुस्तक के दौरान इस छवि की व्याख्या करते हैं। वह लिखते हैं कि तीन अनुग्रह हैं। और रिकॉर्ड के लिए अनुग्रहों को दिव्य प्राणी माना जाता है। वे देवताओं की बेटियां हैं। और वह लिखते हैं कि तीन अनुग्रह हैं क्योंकि एक लाभ देने के लिए है, एक लाभ प्राप्त करने के लिए है और तीसरा इसे वापस करने के लिए है। चक्र या कृपा के चक्र के प्रत्येक पहलू को इन अप्सराओं में से एक, इन देवताओं में से एक द्वारा दर्शाया जाता है। वह लिखते हैं कि वे एक लाभ के कारण हाथ में हाथ डालकर नृत्य करते हैं, अपने मार्ग में एक हाथ से दूसरे हाथ में जाते हैं, फिर भी देने वाले के पास लौट आते हैं। एक उपहार कभी भी देने वाले के लिए खो नहीं जाता है यदि इसे अच्छी तरह से प्राप्त किया जाता है और अच्छी तरह से वापस किया जाता है, यही उनका मुख्य उद्देश्य है। वह लिखते हैं कि अगर यह क्रम कहीं भी टूटा तो इस नृत्य की सुंदरता नष्ट हो जाती है। अगर इसे निरंतर बनाए रखा जाए तो इसकी सुंदरता सबसे अधिक होती है। इसलिए वह इस छवि का उपयोग करते हुए एक चक्र में नृत्य करती तीन कृपाओं की छवि का उपयोग करते हुए पारस्परिकता के इस लोकाचार का वर्णन कर रहे हैं जो लोगों को एक साथ बांधता है, मदद करने और उपहार या सहायता देने की इच्छा और उपहार और सहायता को महत्व देने की प्रतिबद्धता और उपहार दिए जाने, सहायता प्राप्त करने, प्राप्तकर्ता पर आने वाले दायित्व को महत्व देना, प्राप्तकर्ता की प्रतिबद्धता किसी तरह दाता को वापस देने की है। यह चक्र जीवन भर यहाँ तक कि पीढ़ियों तक चलता रहता है और लोगों को आपसी सहायता, समर्थन और सहयोग के रिश्तों में बांधता है, जो अंततः इस समाज में लोगों को बिना किसी सुरक्षा जाल के अपने जीवन को सुरक्षित रूप से जीने में मदद करता है। कृतज्ञता को एक पवित्र दायित्व माना जाता था, जबकि कृतघ्नता को अपवित्रता के बराबर कहा जा सकता है। और फिर यह तथ्य कि लोकाचार और संस्था का प्रतिनिधित्व तीन देवियों द्वारा किया गया था, इसे पुष्ट करता है। बुरी तरह से देना या वापस न करना असल में इन देवियों को चोट पहुंचाना है। यह पवित्रता का उल्लंघन है और इसलिए सेनेका लिख सकते थे, कृतज्ञता वापस न करना एक अपमान है और पूरी दुनिया इसे इसी तरह मानती है। वह अपने संदर्भ में इसे एक और अनिवार्य रूप से सार्वभौमिक मूल्य के रूप में दावा करता है। इसलिए जब हम नए नियम के बारे में सोचते हैं और हम अनुग्रह और नए नियम में कुछ रिश्तों को चित्रित करने के तरीकों के बारे में सोचते हैं, तो मेरा मानना है कि यह हमारे लिए विचार करने के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण पृष्ठभूमि बन जाती है। यह हमें कई चीजों के प्रति सचेत रहने के लिए प्रेरित करता है, जिसमें कई व्याख्यात्मक प्रश्न भी शामिल हैं, जब हम किसी भी दिए गए नए नियम के पाठ को पढ़ते हैं। हमें पहले यह याद रखना होगा कि लेखक और उसके श्रोताओं की रोजमर्रा की दुनिया में अनुग्रह की भाषा कहाँ होगी। जिन लोगों ने गलातियों को प्राप्त किया या इब्रानियों को पत्र प्राप्त किया, वे अनुग्रह के बारे में बहुत पहले से ही जानते थे, जब उन पत्रों के लेखक ने इसे यीशु मसीह में दिखाए गए इसराइल के परमेश्वर के अनुग्रह से जोड़ा था। तो वह कौन सा संदर्भ है जो रोजमर्रा की दुनिया में अनुग्रह के बारे में ज्ञान और अपेक्षाओं को आकार देता है? ईसाई चर्च की धार्मिक सभा से परे श्रोताओं को इस भाषा से बार बार अवगत कराया गया होगा। श्रोता इन अन्य सेटिंग्स से गलातियों जैसे पाठ को सुनने के लिए क्या जानकारी और पूर्वधारणाएं लाएंगे? पौलुस क्या मान सकता है कि वे अनुग्रह के बारे में बात करते समय क्या प्रदान करेंगे, क्योंकि वह इसे एक अकल्पनीय कार्य के रूप में प्रस्तुत करता है जो परमेश्वर के अनुग्रह को अलग रखता है। हम इस बात पर भी ध्यान देना चाहते हैं कि एक नया नियम लेखक किस हद तक उन पूर्वधारणाओं या अनुभवों को चुनौती देने या सुधारने का प्रयास कर सकता है जो श्रोता पाठ की अपनी व्याख्या या एक दूसरे के साथ उनकी बातचीत में ला सकते हैं। साथ ही साथ एक लेखक किस हद तक उस लोकाचार पर निर्भर करता है और उसका निर्माण करता है। कहने का तात्पर्य यह है कि एक ओर पौलुस ने अनुग्रह और पारस्परिकता के चरित्र के रूप में जिस पर हम अभी चर्चा कर रहे हैं, उसमें से बहुत कुछ को परमेश्वर के साथ हमारे संबंध और परमेश्वर के प्रति हमारे दायित्वों के बारे में अपनी चर्चा में शामिल किया है। लेकिन साथ ही पॉल अपनी मंडलियों में उपहारों के आदान प्रदान के बारे में कुछ पूर्वधारणाओं को सही करने की कोशिश कर सकता है। ऐसा करने का एक उल्लेखनीय तरीका यह है कि वह अपने ईसाई समुदायों में अमीर संरक्षकों को प्रभावित करने की कोशिश करता है कि वे अमीर नहीं हैं, जिससे चर्च के भीतर एक शक्ति आधार खरीदकर उस विशेष समुदाय के अन्य अमीर ईसाइयों के खिलाफ अपने हितों को आगे बढ़ाया जा सके। उदाहरण के लिए, यह कुरिन्थ में मुख्य समस्याओं में से एक रहा है। इसलिए यह विचार कि मैं ईसाई सभा को घर, भोजन और आतिथ्य प्रदान करता हूँ, इसका यह अर्थ नहीं है कि मैंने पूरी सभा को अपना ग्राहक बना लिया है। पॉल समीकरण में अन्य अवधारणाओं जैसे कि प्रबंधन को शामिल करेगा ताकि कुछ सामाजिक अपेक्षाओं को संतुलित किया जा सके जो अमीर ईसाई उस नई सेटिंग में ला सकते हैं। मैं इस व्याख्यान के अंतिम भाग में थोड़ा समय बिताना चाहता हूं ताकि संरक्षण, मित्रता और ग्राहक के चरित्र के बारे में थोड़ा और अधिक विस्तार से सोचा जा सके। देने के बारे में क्या सांस्कृतिक ज्ञान हो सकता है? यह बहुत स्पष्ट है कि एक दाता जो अच्छी तरह से जीना चाहता है, एक दाता जो सिर्फ एक निवेशक नहीं है, जैसे सेनेका या बेन सिराह, बुरे दाता के बारे में तिरस्कार पूर्वक बात करेगा। यह जरूरी है कि एक दाता प्राप्तकर्ता लाभार्थी के हित में दे, न कि किसी ऐसे रिटर्न के जरिए अपने फायदे के लिए जो वह उस व्यक्ति से प्राप्त कर सकता है। बेन सिराह ने अपने मूल कहावतों के संग्रह में इस तरह से अशिष्ट दाता का व्यंग्य किया है। मूर्ख लोगों से मिले उपहार से आपको कोई लाभ नहीं होगा क्योंकि वे थोड़े से बदले में बहुत कुछ चाहते हैं। वे थोड़ा देंगे और बहुत कुछ धिक्कारेंगे और वे शहर के ढोल बजाने वाले की तरह अपना मुंह खोलेंगे। मेरा कोई दोस्त नहीं है। मेरे अच्छे कामों के लिए कोई आभार नहीं है। जबकि एक देने वाले को बदले में कुछ पाने के इरादे से नहीं देना चाहिए, उसे उस पारस्परिकता पर भरोसा नहीं करना चाहिए जो कृपालु प्राप्तकर्ता दिखाएगा। एक देने वाले को अपने लाभ को ऐसे लोगों पर नहीं फेंकना चाहिए जो कृतघ्न माने जाते हैं। उन्हें इसके बजाय नेक लोगों को देना चाहिए। डेमोनिकस के उस सलाह संग्रह को देखते हुए हम पढ़ते हैं, अच्छे लोगों पर अपने उपकारों की वर्षा करें, क्योंकि नेक लोगों के दिलों में कृतज्ञता का भंडार एक महान खजाना है। यदि आप अपने उपहार बुरे लोगों को देते हैं तो आपका इनाम उन लोगों के समान होगा जो आवारा कुत्तों को खाना खिलाते हैं, जो उन दोनों पर भौंकते हैं जो उन्हें खाना खिलाते हैं और जो बस चलते हैं। तो वह व्यक्ति कौन है जिसे देना चाहिए? किसी को ऐसे व्यक्ति को देना चाहिए जो आभारी होना जानता हो। कृतज्ञता की प्रतिष्ठा एक अच्छी क्रेडिट रेटिंग के प्राचीन समकक्ष है। और यहाँ एक महीन रेखा है। जैसा कि सेनेका लिखते हैं, मैं अपने उपहारों के प्राप्तकर्ता के रूप में एक व्यक्ति को चुनता हूँ। मैं ऐसे व्यक्ति को चुनता हूँ जो आभारी होगा, न कि वह जो किसी खास तरह से बदले में कुछ देने की संभावना रखता हो। और अक्सर ऐसा होता है कि आभारी व्यक्ति वह होता है जो बदले में कुछ देने की संभावना नहीं रखता, जबकि कृतघ्न व्यक्ति वह होता है जिसने बदले में कुछ दिया है। मेरा आकलन हृदय पर आधारित है। तो सेनेका कहते हैं, देने को शुद्ध और पुण्यमय बनाए रखने के लिए मैं चाहता हूं कि व्यक्ति उपहार को महत्व दे, लेकिन मुझे इस बात की चिंता नहीं है कि वह व्यक्ति मुझे बदले में क्या दे सकता है। वास्तव में मैं ऐसे रिश्ते में प्रवेश कर सकता हूँ जहाँ व्यक्ति बदले में कुछ देता है, लेकिन उसके दिल में उस रिश्ते का कोई मूल्य नहीं होता। यह सिर्फ वस्तुओं का आदान प्रदान है। और आखिरकार दोस्ती या संरक्षण का मतलब यह नहीं है। यह सब दूसरों की तलाश के आपसी दीर्घकालिक संबंधों के निर्माण के बारे में है। सेनेका और अन्य लोग कभी कभी कृतघ्नों को भी देने का आग्रह करते हैं। और यह देवताओं की नकल है जो अच्छे और बुरे दोनों पर समान रूप से सूर्य और वर्षा बरसाते हैं। अगर यह मैथ्यू 5 में यीशु की तरह लगता है तो ऐसा होना चाहिए। यह एक आश्चर्यजनक समानता है। यीशु और सेनेका दोनों ही लोगों को ईश्वर या देवताओं की नकल करते हुए देने का आग्रह करते हैं, ताकि बुरे लोगों की कृतघ्नता किसी को सभी पर उदारता दिखाने से न रोके। सार्वजनिक उपकार सद्गुणों को जगाने की आशा में कृतघ्नों को कभी कभार निजी उपहार देना नेक दान का अभिन्न अंग होगा, क्योंकि अंततः इसका उद्देश्य बदले में कुछ प्राप्त करना नहीं बल्कि किसी और के लिए अच्छा करना था। साथ ही अच्छी तरह से प्राप्त करने लाभों को शालीनता से प्राप्त करने के लिए एक स्पष्ट लोकाचार है। जबकि देने वालों को केवल प्राप्तकर्ता के बारे में सोचना चाहिए, प्राप्तकर्ताओं को दाता के प्रति अपने ऋण के बारे में सोचना चाहिए। सेनेका लाभों पर उसी पुस्तक में लिखते हैं कि जो व्यक्ति कृतज्ञ होने का इरादा रखता है, भले ही वह इसे प्राप्त कर रहा हो, उसे अपने विचारों को एहसान वापस करने के लिए बदलना चाहिए। प्राचीन दुनिया में न्याय के गुण की लगभग सभी चर्चाओं में अपने उपकारकर्ताओं का सम्मान करने और प्राप्त किए गए उपकारों के लिए उचित आभार प्रकट करने की कुछ चर्चाएं शामिल हैं। हमें यहाँ अनुग्रह के नृत्य की छवि, एक घेरे में नृत्य करती तीन देवियों की छवि और यह तथ्य याद रखना होगा कि कृतज्ञता न दिखाने पर आपके नृत्य साथी के पैर की उंगलियां दब जाती हैं और नृत्य बर्बाद हो जाता है। बेशक प्राचीन दुनिया में कृतज्ञता को लागू करने के लिए कोई औपचारिक प्रतिबंध नहीं है। अनुग्रह होने के लिए चल रहे आदान प्रदान को स्वैच्छिक होना चाहिए। अब कृतज्ञता के बारे में क्या? कृतज्ञता कई तरह की अभिव्यक्तियां ले सकती है। अक्सर यह तीन श्रेणियों में से एक या अधिक में आती है। पहला है उपकारकर्ता के प्रति अपने व्यवहार और अपनी गवाही के माध्यम से उपकारकर्ता को सम्मान देना। सेनेका प्राप्तकर्ताओं से आग्रह करता है, आइए हम अपनी भावनाओं को व्यक्त करके दिखाएं कि हम उस आशीर्वाद के लिए कितने आभारी हैं जो हमें मिला है, और न केवल देने वाले की सुनवाई में बल्कि हर जगह उनकी गवाही दें। निर्माणों के मामले में होता है जो हमेशा के लिए एक परोपकारी की उदारता की पत्थर की गवाही देंगे, या अधिक मूल्यवान उपहारों के मामले में स्थापित की गई मूर्तियां, या किसी सार्वजनिक समारोह में परोपकारी को सम्मानित करना और इसी तरह। संयोग से यह किसी के भाषण में ईश्वर का सम्मान करने, गवाही देने या धन्यवाद और प्रशंसा का भजन बोलने के लिए अक्सर प्रेरणा होती है। उदाहरण के लिए अपोक्रिफल पुस्तक टोबिट में स्वर्गदूत राफेल उन लोगों से आग्रह करता है जिन्हें ईश्वर ने हाल ही में आपदा से बचाया है कि वे ईश्वर को आशीर्वाद दें और सभी जीवित लोगों की उपस्थिति में उनके द्वारा आपके लिए किए गए अच्छे कार्यों के लिए उन्हें स्वीकार करें। परमेश्वर के कामों को सब लोगों के सामने उचित आदर के साथ प्रकट करो, उसे स्वीकार करने में देर मत करो। परमेश्वर के कामों को प्रकट करो और उचित आदर के साथ उसे स्वीकार करो। सम्मान कृतज्ञता के प्रतिदान का एक महत्वपूर्ण घटक था। इसी तरह सेवा या उपहार के प्रतिदान का कोई अन्य ऐसा प्रतिदान भी था। सेनेका लिखते हैं कि देने वाले के उदार स्वभाव का प्रतिदान तब मिलता है जब हम उसे कृतज्ञतापूर्वक ग्रहण करते हैं। एहसान का दूसरा हिस्सा जिसमें कुछ भौतिक चीजें शामिल हैं, हमने अभी तक चुकाया नहीं है, लेकिन हम अभी भी ऐसा करने की उम्मीद करते हैं। सद्भावना का ऋण अनुकूल स्वभाव के लिए अनुकूल स्वभाव सद्भावना के बदले में चुकाया गया है। भौतिक ऋण के लिए भौतिक प्रतिफल की आवश्यकता होती है। यहाँ हमें भौतिक दुनिया या भौतिक दुनिया में किसी भी तरह की सहायता या सेवा के रूप में भौतिक रूप से समझना होगा, और इस प्रकार मैं किसी भी भौतिक तरीके से सम्राट को उपहार के लिए भुगतान नहीं कर सकता, लेकिन मैं सम्राट की आज्ञा का पालन करके या जब उसे कुछ करने की आवश्यकता हो तो राज्यपाल की आज्ञा का पालन करके और बदले में उस सेवा को मुफ्त में देकर सम्राट को भुगतान कर सकता हूँ। आप शायद पहले से ही भगवान के साथ इसके संबंध को समझ सकते हैं। मैं ईश्वर को किसी भी चीज के लिए ऋण नहीं चुका सकता, लेकिन मैं ईश्वर को वह दे सकता हूँ जो मैं कर सकता हूँ, ईश्वर ने मुझे जो दिया है उसके लिए कृतज्ञता की अभिव्यक्ति के रूप में आज्ञाकारिता और सेवा के आजीवन कार्य। और एक आभारी प्रतिक्रिया का तीसरा घटक अपने उपकारकर्ता के प्रति वफादारी है। जैसा कि मैंने पहले उल्लेख किया था, संरक्षक अक्सर एक दूसरे के साथ प्रतिस्पर्धा में थे और इसलिए उस व्यक्ति के प्रति वफादारी जिसने मुझे अतीत में उपकार दिखाया है, कृतज्ञता और संबंध की एक बहुत ही महत्वपूर्ण अभिव्यक्ति है। मैं सिर्फ एक नेक इंसान बनकर उस पार्टी में नहीं जा सकता जो जीतती हुई नजर आती है। मुझे उस व्यक्ति के साथ खड़ा होना चाहिए जिसने अतीत में मेरी सहायता करके मेरा साथ दिया है। सेनेका लिखते हैं कि इस वफादारी को व्यक्तिगत लाभ के किसी भी विचार से ऊपर रखा जाना चाहिए। वह लिखते हैं कि यह कृतघ्न व्यक्ति ही है जो सोचता है कि मैं भी कृतज्ञता का बदला चुकाना चाहता था, लेकिन मुझे खर्च का डर है, मुझे खतरे का डर है। मैं उन अन्य लोगों को नाराज करने से कतराता हूं जिनके साथ मेरा संरक्षक अनुकूल नहीं है। मैं अपने हितों के बारे में सोचना पसंद करूंगा। सेनेका के एक पत्र में वह लिखते हैं कि कोई भी व्यक्ति तब तक वास्तव में आभारी नहीं हो सकता जब तक कि वह उन चीजों का तिरस्कार करना न सीख ले जो आम लोगों को विचलित कर देती हैं। यदि आप एहसान का बदला लेना चाहते हैं तो आपको निर्वासन में जाने, अपना खून बहाने, गरीबी झेलने या यहाँ तक कि अपनी मासूमियत को दागदार होने और शर्मनाक बदनामी का सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए। कहने का मतलब यह है कि आपको अपने संरक्षक के साथ अपने संबंध को अन्य सभी विचारों से ऊपर रखना होगा। और अगर वह मुश्किल समय से गुजर रहा है तो आपको इस तथ्य को स्वीकार करना चाहिए कि उसके साथ आपके संबंध के कारण वे मुश्किल समय आप पर भी आएंगे, न कि व्यक्तिगत लाभ प्राप्त करने के लिए उस संबंध को तोड़ दें। हम हेरोदेस महान के बारे में बहुत सारी बुरी बातें सुनते हैं क्योंकि आप जानते हैं कुल मिलाकर वह एक तरह का बदमाश था, लेकिन वह जानता था कि एक वफादार ग्राहक कैसे बनना है। अपने युवा दिनों में पूरी तरह से पागल होने से पहले वह मार्क एंटनी का वफादार ग्राहक था और लंबे समय तक यह उसके लिए बहुत अच्छा रहा जब तक कि एंटनी ने खुद को ऑक्टेवियन के खिलाफ गृहयुद्ध में नहीं पाया, जो बाद में सम्राट ऑगस्टस और रोम की सभी सेनाएं बन गईं जो एंटनी के साथ मिस्र में तैनात नहीं थीं। और बेशक हम जानते हैं कि 31 ईसा पूर्व में एंटनी बुरी तरह हार गया था। तो अब हेरोदेस क्या करने जा रहा है जब उसके संरक्षक की अपमानजनक तरीके से मृत्यु हो गई है? हेरोदेस खुद ऑगस्टस, खुद ऑक्टेवियन के सामने आता है और कहता है, मैं तुमसे झूठ नहीं बोलने वाला। मैं एंटनी के साथ अपने संबंध को कमतर आंकने की कोशिश नहीं करने वाला। वह मेरे संरक्षक और मेरे मित्र थे और मैंने अंत तक उनके प्रति वफादारी और समर्थन दिखाया और मुझे इसका कोई पछतावा नहीं है। लेकिन अब मैं आपको जो पेशकश करना चाहता हूँ ऑगस्टस, अब ऑक्टेवियन, वह यह है कि मैं जानता हूँ कि एक वफादार ग्राहक और दोस्त कैसे बनना है। मैं वहां पहुंच रहा हूँ। हेरोदेस के बारे में मैं यही एकमात्र अच्छी बात कह सकता हूँ, लेकिन वह इतना तो जानता ही था। हमने इस सामाजिक संदर्भ में अनुग्रह शब्द के बारे में बहुत बात की है। मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि इन रिश्तों के संदर्भ में आस्था शब्द का भी स्वाभाविक स्थान है। चारिस जितना विशिष्ट नहीं है, जैसा कि ग्रीक शब्द चारिस इस सामाजिक संस्था के संदर्भ में करता है, लेकिन आस्था और इसके विपरीत के बारे में बात करने के लिए एक प्रमुख स्थान संरक्षक ग्राहक या मित्रता संबंधों में है। पिस्टिस ग्रीक शब्द जिसका हम आम तौर पर आस्था या भरोसा के रूप में अनुवाद करते हैं, का उपयोग संरक्षक की विश्वसनीयता या किसी मित्र की उस बात को देने की विश्वसनीयता पर विश्वास के बारे में बात करने के लिए किया जाता है जो वादा किया गया था, और इसका उपयोग ग्राहक की निर्भरता, आस्था बनाए रखने के लिए उसकी विश्वसनीयता किसी विशेष संरक्षक या मित्र के साथ आस्था बनाए रखने के बारे में बात करने के लिए भी किया जाता है। पिस्टिस का विपरीत शब्द एपिस्टिया है, जिसे आमतौर पर अविश्वास या बेवफाई कहा जाता है। इसलिए हम इसे संरक्षक या मित्र या यहाँ तक कि ग्राहक की विश्वसनीयता पर भरोसा न करने के बारे में बात करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। या इस रिश्ते के प्रति बेवफाई विश्वासघात की अभिव्यक्ति के रूप में। यह सब कहने का मतलब है, जैसा कि हम नए नियम को पढ़ते हैं, यह हमेशा ऐसा नहीं होता है, लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि विश्वास, वफादारी, अविश्वास और बेवफाई शब्द अनुग्रह के रिश्तों, संरक्षक ग्राहक रिश्तों के संदर्भ में होते हैं, जिसमें संरक्षक अक्सर ईश्वर या यीशु होते हैं और ग्राहक मानव शिष्य होते हैं। इस व्याख्यान को समाप्त करने के लिए मैं यीशु के जीवन से एक प्रकरण देखना चाहता हूं, जो हमें सुसमाचार से वास्तविक जीवन की सेटिंग में काम करते हुए संरक्षण, दलाली और ग्राहक दिखाता है। यह लूका अध्याय 7 से आता है। यीशु ने लोगों को अपने सभी शब्द प्रस्तुत करने के बाद वह कफरनहूम में प्रवेश किया। एक सूबेदार के पास एक नौकर था जो उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण था, लेकिन वह नौकर बीमार था और मरने वाला था। जब सूबेदार ने यीशु के बारे में सुना, तो उसने कुछ यहूदी बुजुर्गों को यीशु के पास भेजा और उनसे कहा कि वे आकर उसके नौकर को ठीक कर दें। जब वे यीशु के पास आए, तो उन्होंने यीशु से बहुत विनती की। उन्होंने कहा, वह इस योग्य है कि तुम उसके लिए यह करो, वह हमारे लोगों से प्यार करता है और उसने हमारे लिए आराधनालय बनवाया। यीशु उनके साथ गया। वह घर के पास ही पहुंचा था कि सेनापति ने अपने मित्रों को यीशु के पास यह संदेश भेजा, प्रभु परेशान मत हो, मैं इस योग्य नहीं हूं कि तुम मेरी छत के नीचे आओ। वास्तव में मैं अपने आप को तुम्हारे पास आने के योग्य भी नहीं समझता था। केवल वचन कहो और मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। मैं भी अधिकारी के अधीन नियुक्त किया गया मनुष्य हूँ और मेरे अधीन सिपाही हैं। मैं एक से कहता हूँ जा, तो वह जाता है और दूसरे से कहता हूँ आ, तो वह आता है। मैं अपने सेवक से कहता हूँ यह करो और सेवक वैसा ही करता है। जब यीशु ने ये बातें सुनी तो वह सूबेदार से प्रभावित हुआ। उसने अपने पीछे आ रही भीड़ की ओर मुड़कर कहा, मैं तुमसे कहता हूँ कि इसराइल में भी मुझे ऐसा विश्वास नहीं मिला। जब सूबेदार के दोस्त उसके घर लौटे तो उन्होंने पाया कि नौकर पूरी तरह स्वस्थ हो गया है। अब आइए इस कहानी में काम करने वाली कुछ गतिशीलताओं पर नजर डालें। एक सूबेदार, एक रोमन, एक बाहरी व्यक्ति और एक ऐसा व्यक्ति जो खुद को यहूदिया गलील में उत्पीड़क वर्ग का हिस्सा मानता है, वास्तव में इस मामले में उसे किसी चीज की जरूरत है। उसे ऐसी चीज की जरूरत है जो आम लोग नहीं दे सकते, जो उसके अपने डॉक्टर नहीं दे सकते। उसे एक घरेलू नौकर के लिए उपचार की जरूरत है, जो लंबे समय से उसके घर का प्रिय और भरोसेमंद सदस्य रहा है और जिसकी सूबेदार को बहुत परवाह है। यीशु के पास कुछ है चंगा करने की शक्ति। लूका की कहानी में इस बिंदु तक वह राक्षसों को भगाने, बीमारों को ठीक करने और सभी तरह के दिव्य चमत्कार करने में सक्षम होने के लिए प्रसिद्ध है। शतपति वह चाहता है जो यीशु दे सकता है और वह सोचता है कि इसे कैसे प्राप्त किया जाए। इसलिए वह खुद नहीं जाता क्योंकि वह एक रोमन उत्पीड़क है। वह नहीं जानता कि उसे इस तरह से कैसे स्वीकार किया जाएगा, लेकिन उसके पास ऐसे लोग हैं जो इसे थोड़ा कठोर शब्दों में कहें तो उसके प्रति कुछ ऋणी हैं। कफरनहूम के बुजुर्गों ने संरक्षण का आनंद लिया है। वास्तव में कफरनहूम के पूरे यहूदी समुदाय ने रोमन सेंचुरियन के संरक्षण का आनंद लिया है जो उनके बीच रहता है। आप जानते हैं, बदसूरत रोमन नहीं बल्कि अच्छा रोमन बनना चाहता है। उन्होंने कफरनहूम के समुदाय पर बहुत ज्यादा संसाधन खर्च किए हैं, जाहिर है कि उन्होंने उनके लिए एक आराधनालय का निर्माण किया है। वैसे पहली सदी का आराधनालय पहली सदी के आराधनालय की नींव नहीं, आज भी कफरनहूम में देखा जा सकता है। यह देखना वाकई बहुत अच्छा है कि चौथी सदी के चूना पत्थर के आराधनालय के नीचे क्या है, और शायद इस शताब्दी के शासक ने इसकी नींव रखी हो। इसलिए वह उन लोगों को भेजता है जिन्हें उसने लाभ पहुंचाया है, और यहूदी समुदाय के वे बुजुर्ग शायद इस बात से बहुत खुश हैं कि उन्हें अपने स्थानीय संरक्षक के लिए कुछ अच्छा करने का मौका मिला है, बदले में जो उसने उनके लिए किया है। इसलिए वे यीशु के पास जाते हैं और वे पूरी ताकत से उस सूबेदार के गुणों को बेचते हैं। वह इस योग्य है कि आप उसके लिए ऐसा करें। उसने हमारे लिए एक आराधनालय बनवाया है। वह हमारे लोगों से प्यार करता है। वह अनुग्रह का पात्र है। वह कोई आम रोमन नहीं है। इसलिए वे मध्यस्थों, दलालों के रूप में कार्य करते हैं, किसी ऐसे व्यक्ति से संपर्क करते हैं जिससे वे संपर्क कर सकते हैं, अपने लोगों के एक सदस्य, यहूदी लोगों के एक सदस्य, किसी ऐसे व्यक्ति की ओर से जिसे किसी चीज की जरूरत है। और वे ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि वे खुद जानते हैं कि वे सेंचुरियन के पक्ष के प्राप्तकर्ता हैं, और इसलिए उसकी उदारता के लिए उसके प्रति ऋणी हैं। अब यह पहले से ही काम पर इन गतिशीलता का एक महान उदाहरण है। यीशु जाने के लिए सहमत हैं। यीशु को यकीन हो जाता है, और रास्ते में सूबेदार कुछ और भी आश्चर्यजनक काम करता है। वह लोगों के एक और समूह को यीशु के पास भेजता है जो संयोगवश बाद में उसके मित्र कहलाते हैं। तो लोग उसके घर के सदस्य, उसके विस्तृत ग्राहक वर्ग के सदस्य। वह इन दोस्तों को यह कहने के लिए भेजता है, जहां हो वहीं रुक जाओ। मैं इस लायक नहीं हूं कि तुम मेरी छत के नीचे आओ, लेकिन मैं जानता हूं कि आपके पास ऐसा करने का अधिकार है और आपको बस इतना कहना है। इसलिए यह सब मैं अधिकार को समझता हूं। मैं जानता हूं कि किसी से यह कहना क्या होता है, यह करो, और वह ऐसा करता है। और मुझे पता है कि जब ईश्वरीय कृपा की बात आती है तो आपके पास उस तरह का अधिकार है। और यह भरोसे का, पिस्टिस का, उस शब्द का एक अद्भुत उदाहरण है जिसके बारे में हम बात कर रहे थे। मुझे पता है कि आप इस कृपा से सफल हो सकते हैं। मुझे कोई संदेह नहीं है। आप पूरी तरह से विश्वसनीय हैं। और यीशु पहचानते हैं कि यह वही बात है जो सूबेदार कह रहा है। वह कहता है, वाह, इस तरह का भरोसा, मेरी विश्वसनीयता पर इस तरह का भरोसा मुझे इज़राइल में नहीं मिला, लेकिन मुझे यह यहां मिलता है। और वह इस सेंचुरियन को यह एहसान देता है। तो कहानी में हम वास्तव में काम करते हुए कई गतिशीलता देखते हैं। मध्यस्थता, पारस्परिकता, बुजुर्ग इस अविश्वसनीय रूप से उदार रोमन अधिकारी को वापस देने के लिए जो कुछ भी कर सकते हैं करने की कोशिश कर रहे हैं, और विश्वास भी काम कर रहा है। हमारे अगले व्याख्यान में हम एक पाठ इब्रानियों को लिखे पत्र को इस नजरिए से देखने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि यह सांस्कृतिक पृष्ठभूमि नए नियम के पत्र में कितनी रोशनी डाल सकती है। यह डॉक्टर डेविड डिसिल्वा द्वारा नए नियम की सांस्कृतिक दुनिया पर दिए गए उनके उपदेश हैं। यह सत्र 3 है, संरक्षण और पारस्परिकता।